जैसे जैसे दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस बढ़ रही हैं, पहली जनरेशन के सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन ब्लेड्स और लिथियम आयन बैटरीज अपनी लाइफ स्पैन के अंत तक पहुंच रहे हैं। जब ये वेस्ट लैंडफिल्स में भरने लगेगा, क्या ये टेक्नोलॉजीज रिसाइकल नहीं हो सकती? या ये ग्रीन इनिशिएटिव्स एनवायरनमेंट के लिए और भी बुरे हो सकते हैं? या इमर्जिंग रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज इस वेस्ट को नई जनरेशन के फोटोवोल्टिक्स, विंड टर्बाइंस और बैटरी बैंक्स में बदल सकती हैं, जिन्हें लगातार रिसाइकल और रिजेनरेट किया जा सके। हम इस लूप को बंद करने के कितने करीब हैं? मैं हूं मैट फेरल। वेलकम टू अनडिसाइडेड। ये वीडियो इनकॉग्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जब हम रिसाइकलिंग के बारे में सोचते हैं, तो हम ग्लास, पेपर और प्लास्टिक्स को अलग अलग बिन्स में सॉर्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड मटेरियल्स टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर पैनल्स और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स के साथ क्या किया जा सकता है? आजकल के ज्यादातर लार्ज स्केल सोलर फार्म्स सिलिकॉन फोटोवोल्टिक पैनल्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें सिलिकॉन वेफर्स पर सिल्वर सर्किट्स प्रिंट करके और कॉपर कनेक्शंस जोड़कर बनाया जाता है। ये सेल्स फिर ग्लास पैनल्स के बीच में सैंडविच किए जाते हैं, जिनमें स्टिकी पॉलीमर की लेयर्स होती हैं। लेकिन आप इस सैंडविच को कैसे अनमेक करते हैं ताकि पैनल के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को रिसाइकल किया जा सके? और पॉलीमर का क्या किया जाए? ये एक बड़ी समस्या है। 2030 तक लगभग 80 लाख मेट्रिक टन के रिटायर्ड सोलर पैनल्स ग्लोबल स्तर पर जमा हो सकते हैं। 2050 तक ये संख्या 8 करोड़ तक पहुंच सकती है। कई लोगों के लिए इन पैनल्स को रिसाइकल करना लगभग $18 प्रति यूनिट पर आकर्षक नहीं है, जब उन्हें लैंडफिल में डंप करना सिर्फ $5 का खर्च है। लेकिन जैसे जैसे सोलर फार्म्स एक्सपैंड हो रहे हैं, हम एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां रिक्लेमिंग मटेरियल्स नए माइनिंग से सस्ता हो सकता है। 2050 तक MIT प्रोजेक्ट्स के अनुसार रिटायर्ड पैनल्स से रिकवर्ड मटेरियल्स सालाना $2 बिलियन के हो सकते हैं। ये संख्या आंशिक रूप से क्रूशियल कंपोनेंट्स जैसे सिल्वर की बढ़ती डिमांड से ड्रिवन है, जिसकी कीमत पिछले 3 सालों में 3 गुना हो गई है। सोलर पैनल कॉस्ट्स का 60% सिल्वर की कीमत से आता है। रिसाइकलिंग एक अधिक आकर्षक अल्टरनेटिव बन सकता है। एक और ड्राइवर है लेजिस्लेशन। वॉशिंगटन स्टेट ने सोलर पैनल्स को लैंडफिल्स में जाने से बैन कर दिया है और यूरोपियन यूनियन की तरह मैन्युफैक्चरर्स को टेक बैक प्रोग्राम्स का मैंडेट दिया है ताकि पैनल्स रिसाइकल हो सकें। कुछ कंपनियां इस सस्टेनेबिलिटी पुश के लिए प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, जैसे टेक्सास की सोलर साइकिल, जिसने सोलर पैनल सैंडविच को अनमेक करने की एक इनोवेटिव प्रोसेस विकसित की है, जिससे हर यूनिट का 90% तक रिसाइकल किया जा सकता है। कंपनी जंक्शन बॉक्स और एल्यूमिनियम फ्रेम को हटा देती है, फिर हीट का उपयोग करके ग्लास को पॉलीमर और सोलर सेल्स से साफ तरीके से अलग करती है। सोलर साइकिल फिर सेल्स को ग्राइंड करके वैल्यूएबल मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन को रिकवर करती है। मैंने उनके टेक्सास के फैसिलिटी का दौरा किया है और अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे पास इस पर एक पूरा वीडियो है। जल्द ही सोलर साइकिल के जॉर्जिया के बड़े नए रिसाइकलिंग प्लांट में एकत्र किया गया ग्लास नए फोटोवोल्टिक पैनल्स के लिए भेजा जाएगा, जिन्हें एलाबामा में रूनर्जी, साउथ कैरोलिना में सिल्फैब सोलर और मिनेसोटा और ऑन्टेरियो में हीलियन द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और भी कंपनियां रिसाइकलिंग मूवमेंट में शामिल हो रही हैं, जिनमें solarpanelrecycling.com शामिल है, जो अब नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में फैसिलिटीज ऑपरेट कर रही है और टेक्सास में जल्द ही एक तीसरी फैसिलिटी खोल रही है। इटालियन स्टार्टअप 9Tech ने अभी 2 इनोवेशंस की घोषणा की है ताकि करंट रिसाइकलिंग मेथड्स के इमिशंस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम किया जा सके। ये फिल्टर्स का उपयोग करके कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और अन्य हानिकारक पोल्यूटेंट्स को कैप्चर कर रहा है, जो बस्टेड अप सोलर पैनल्स के पॉलीमर को जलाने पर रिलीज होते हैं, और सिलिकॉन वेफर से सिल्वर को टॉक्सिक रिएजेंट्स जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रिप करने के बजाय 9Tech अल्ट्रासोनिक बाथ्स में फार जेंटलर ऑर्गेनिक एसिड से सिल्वर को डिसलॉज कर रहा है। कंपनी का दावा है कि ये 90% सिल्वर, 95% सिलिकॉन और 99% या उससे अधिक कॉपर, एल्यूमिनियम और ग्लास को हाई प्यूरिटी के साथ रिकवर करती है और अगले 18 महीनों में एक पायलट प्लांट से रिसाइकलिंग फैसिलिटी में स्केल अप करेगी। ये सोलर पैनल रिसाइकलिंग में कुछ शानदार कदम है, लेकिन एक अधिक रिसाइकलेबल सोलर पैनल बनाने के बारे में क्या? खैर, अगर आप एक ऐसा सोलर पैनल बना सकते हैं जिसमें पैनल्स और ग्लास को जोड़ने के लिए पॉलीमर्स की आवश्यकता न हो, इसका मतलब होगा कि रिसाइकलिंग के दौरान उन्हें जलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये जल्द ही एक हकीकत बन सकता है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी के रिसर्चर्स के धन्यवाद से, जिन्होंने फेमटोसेकंड लेजर्स का उपयोग करके ग्लास टू ग्लास वेल्ड्स बनाने का तरीका खोजा है, जिससे सोलर पैनल सैंडविच के निर्माण में पॉलीमर एडहेसिव्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फेमटोसेकंड लेजर्स सुपर शॉर्ट पल्सेस इमिट करते हैं, जैसे क्वाड्रिलियंस ऑफ अ सेकंड के इंफ्रारेड लाइट, जो ग्लास को एक साथ पिघलाते हैं। ये एक हर्मेटिक सील बनाता है। ये लेजर वेल्ड्स इतनी सटीकता से लगाए जाते हैं और इतनी तेजी से परफॉर्म करते हैं कि वे आसपास के मटेरियल्स को गर्म नहीं करते, जिसका मतलब है कि इन्हें सिलिकॉन, पेरोवस्काइट्स और कैडमियम टेलुराइड सहित सभी प्रकार की सोलर टेक्नोलॉजीज के लिए उपयोग किया जा सकता है। सोलर पैनल से पॉलीमर एडहेसिव्स को हटाना न केवल उन्हें रिसाइकल करना आसान और साफ बना देगा, बल्कि ये उन्हें अधिक समय तक चलने वाला भी बना सकता है। पॉलीमर डिग्रेडेशन एक प्रमुख कारण है कि सोलर पैनल्स को 25 साल या उससे अधिक के बाद रिटायर कर दिया जाता है। एडहेसिव सूरज में डिग्रेड हो जाता है, जिससे डिसकलरेशन होता है, जो सेल्स तक फोटोन फ्लक्स को कम करता है। और पॉलीमर का डिलिमिनेशन पानी और ऑक्सीजन को अंदर आने दे सकता है, जिससे कोरोजन होता है। ये टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन इंक्रीज्ड लॉन्जेविटी और रिसाइक्लेबिलिटी एक 1-2 punch डिलीवर कर सकती है। सोलर पैनल्स को फार्म पर अधिक समय तक रख सकती है और जब उनका समय समाप्त हो जाए तो उन्हें अधिक रेडिली रिसाइकल कर सकती है। हमारे सोलर पैनल सैंडविच स्ट्रक्चर में शायद हम जल्द ही कह सकेंगे होल्ड द चीज प्लीज। नए एडवांसेस के साथ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग में हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेसेस अधिक स्ट्रीमलाइंड और बेहतर कनेक्टेड हो रहे हैं। हमें एक ट्रू सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं। यही गोल है विंड एनर्जी के लिए भी। जबकि विंड टर्बाइन ब्लेड्स लगातार फुल सर्कल्स में घूमते हैं, उनकी रिसाइक्लेबिलिटी खैर स्टक रही है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रही है। और स्टक महसूस करने की बात करते हुए, मैं अनवांटेड स्पैम मैसेजेस की मैसिव मात्रा के नीचे स्टक था, और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, आज के स्पॉन्सर Incogni आपकी प्राइवेसी को रिस्टोर करने में मदद कर सकते हैं। जब मेरी पत्नी और मैं अपना घर बनवा रहे थे, लोन्स सेटअप कर रहे थे, इंश्योरेंस ले रहे थे, और जब आप मूव करते हैं तो आपको जो कुछ भी करना होता है, मैंने देखा कि मुझे मिलने वाले स्पैम और प्रमोशनल ईमेल्स की मात्रा में मेजर अपटेक हुआ। मुझे यकीन है कि आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियों ने मेरी जानकारी डेटा ब्रोकर्स को बेच दी। कभी कभी शेडी लोगों को जानकारी बेच देते हैं। Incogni मदद करेगा। डेटा ब्रोकर्स से जानकारी डिलीट करने का अधिकार है, पर समय लगेगा। मैंने Incogni के लिए साइन अप किया, उन्हें मेरी ओर से काम करने का लीगल राइट दिया और फिर बस आराम किया। आपको अपडेट्स दिखेंगे कि किन डेटा ब्रोकर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हैं और किन उन्होंने कंप्लाई किया है। इससे आसान कुछ नहीं। अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर कंट्रोल चाहते हैं तो Incogni ट्राई करें। अपनी पर्सनल डेटा को वापस लें। नीचे दिए गए लिंक पर कोड अनडिसाइडेड का उपयोग करें और एनुअल प्लान पर 60% की छूट पाएं। Incogni और आप सभी का चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। विंड टर्बाइन रिसाइकलिंग प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। आज के टर्बाइन विंग स्पैन्स एक फुटबॉल फील्ड से भी लंबे हैं। ये मैसिव साइजेस मटेरियल चैलेंजेस लाते हैं। 20 से अधिक वर्षों तक चलने के लिए ब्लेड्स को ड्यूरेबल होना चाहिए और 100 मिलियन लोड साइकिल्स के दौरान वेट सहन करना चाहिए। उन्हें लाइट वेट और स्टिफ होना चाहिए। मॉडर्न टर्बाइन्स हॉलो होते हैं। आउटर शेल्स ग्लास या कार्बन फाइबर से बने होते हैं। इपॉक्सी में बाउंड होते हैं ताकत के लिए। रेजिन समस्या है। थर्मोसेट्स को रिसाइकल करने के लिए फाइबर्स को तोड़ने का कोई आसान तरीका नहीं है। रेजिन जलाने से एयर पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं और फाइबर्स ब्रिटल हो जाते हैं। विकल्प है रेजिन को हार्श सॉल्वेंट से डिग्रेड करना, जिससे हैजर्डस वेस्ट जनरेट होता है। नतीजतन रिटायर्ड ब्लेड्स लैंडफिल में जाते हैं। 2050 तक अनुमानित 30 मिलियन टन्स के विंड टर्बाइन ब्लेड वेस्ट ग्लोबल स्तर पर लैंडफिल्स में जमा हो सकते हैं, जो क्लीन या सस्टेनेबल नहीं है। इनोवेशन को स्पर करने के प्रयास में US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने $3.6 million उन कंपनियों को अवार्ड किए हैं जो ब्लेड्स के लिए नए सस्टेनेबल यूजेस इन्वेंट कर रही हैं, इसके विंड टर्बाइन मटेरियल्स रिसाइकलिंग प्राइस के हिस्से के रूप में। कुछ कंपनियां ग्राउंड अप ब्लेड्स का उपयोग कंस्ट्रक्शन में कर रही हैं। रिसाइक्लेबल फ्लोरिंग, वाटरप्रूफ कंक्रीट ट्रीटमेंट्स और लार्ज स्केल 3D प्रिंटिंग के लिए फिलर्स बना रही हैं। एक और कंपनी इलेक्ट्रिकल पल्सेस से ब्लेड लाइफ बढ़ा रही है। ग्लास फाइबर रेजिन कंपोजिट को सिलिकॉन कार्बाइड में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जो क्लीन हाइड्रोजन जनरेट करता है। विंड पावर को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें पुराने टर्बाइन ब्लेड्स को रीयूज करने से आगे बढ़ना होगा। हमें उन्हें नए ब्लेड्स में रिसाइकल करना होगा। रिसाइकलिंग इतनी होपलेस है? NREL के रिसर्चर्स ने एक रेजिन इंजीनियर किया है जो रिसाइक्लेबल विंड टर्बाइन ब्लेड्स की शुरुआत कर सकता है। इस पॉलीमर को PCAN या पॉलिएस्टर कोवेलेंट अडैप्टेबल नेटवर्क कहा जाता है, जो ट्रेडिशनल रेजिन से ग्रीनर है क्योंकि ये बायोमास डिराइव्ड मटेरियल से बना है। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेजिन के विपरीत PCAN ब्रेकडाउन होता है जब रेजिन फाइबर कंपोजिट को सिंपल मेथनॉल में 225 डिग्री सेल्सियस पर 6 घंटे के लिए सोख किया जाता है, जिससे स्क्वीकी क्लीन स्ट्रॉन्ग ग्लास फाइबर्स रीयूज के लिए तैयार रहते हैं। जबकि रेजिन खुद डायरेक्टली रीयूजेबल नहीं है, डिग्रेडेड रेजिन को रिजिड और फ्लेक्सिबल पॉलीयुरेथेन प्लास्टिक्स में रीपर्पस किया जा सकता है, जिससे इसे वैल्यूएबल सेकेंड लाइफ मिलती है। PCAN का उपयोग करके टीम ने एक नॉन मीटर का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रिसाइक्लेबल विंड ब्लेड तैयार किया है। उन्होंने PCAN रीइंफोर्स्ड फाइबर ग्लास को कई टेस्ट्स में डाला और यह पाया कि PCAN की स्ट्रेंथ वास्तव में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेजिन के बराबर थी। ये विचार पूरी तरह से गलत है कि रिसाइक्लेबल होने के लिए डिजाइन किए गए प्रोडक्ट में खराब मटेरियल प्रॉपर्टीज होंगी। PCAN के साथ ऐसा नहीं है, जो विंड टर्बाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग में सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक एडवांसमेंट है। मुझे पाई की क्रेविंग हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन साइड को रिसाइक्लेबल होना चाहिए। जिस तरीके से हम एनर्जी स्टोर करते हैं, उसे भी ग्रीन फुटप्रिंट की जरूरत है। पीक सोलर एनर्जी और पीक एनर्जी यूज के गैप को एड्रेस करने के लिए ग्रिड स्टोरेज सिस्टम्स रोल आउट हो रहे हैं। कैलिफोर्निया को लें, जिसने 2019 में अपने ग्रिड में लार्ज स्केल बैटरीज को इंटीग्रेट करना शुरू किया। 2019 से कैलिफोर्निया ने बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को 1250% तक बढ़ा दिया है। ग्लोबली 2030 में 97 GW की एनर्जी स्टोरेज जोड़ी गई और 2030 तक 442 GW प्रोजेक्टेड है। इस ग्रोथ को लार्जली ड्रिवन किया गया है रिमार्केबल 43% ड्रॉप से एनर्जी स्टोरेज प्राइसेस में चाइना में 2030 और 2024 के बीच। लेकिन जैसे सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन ब्लेड्स, सभी अच्छी बैटरीज का अंत होना चाहिए। ये बैटरीज एनर्जी ग्रिड स्टोरेज सिस्टम्स में ही नहीं, बिजनेसेस, होम्स, कार्स में भी हैं। ये सारी टेक कितनी रिसाइक्लेबल है? बहुत। बैटरी मटेरियल्स जैसे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट डिग्रेड नहीं होते, उन्हें रिकवर, रिफाइन और नए बैटरी प्रोडक्शन में रीइंटीग्रेट किया जा सकता है। लिथियम बैटरीज में उपयोग किए जाने वाले मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन को ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस से जोड़ा गया है। लिथियम बैटरीज को रिसाइकल करने से एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स 59% कम हो जाते हैं। ईयू ने लेजिस्लेशन पास किया जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए मिनिमम रिसाइकल्ड कंटेंट रिक्वायरमेंट सेट करता है। रिसाइकल्ड मटेरियल से नई बैटरीज प्रोड्यूस करने का तरीका है इसे लोकली करना। फिर से गोल एक सर्कुलर सप्लाई चेन है, जो US बेस्ड कंपनी रेडवुड मटेरियल्स का एम है। टेस्ला को फाउंडर JB स्ट्रॉबल द्वारा लॉन्च की गई निवाडा में रेडवुड मटेरियल्स का अनुमान है कि यह हर साल डीकमिशन्ड लिथियम सेल्स के 20 गीगावाट आवर्स को रिसाइकल करता है, जिससे 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्रेश बैटरी पैक्स के साथ आउटफिट करने के लिए पर्याप्त मटेरियल्स रिक्लेम होते हैं। कंपनी केमिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस से 95% से अधिक बैटरी मटेरियल्स रिकवर करती है, उन्हें फ्रेश एनोड और कैथोड कंपोनेंट्स में रिसाइकल किया जा सके। कंपनी रिसाइकलिंग डिमांड्स को पूरा करने के लिए साउथ कैरोलिना में नई फैसिलिटीज खोल रही है और रिडक्स रिसाइकलिंग को अक्वायर कर रही है। रेडवुड मटेरियल्स ने टेस्ला, फोर्ड, जनरल मोटर्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज रिसाइकल करने के लिए डील्स कर ली हैं। BMW और टोयोटा ने रेडवुड मटेरियल से सीधे नए बैटरी मटेरियल कंपोनेंट्स खरीदने के लिए कमिट किया है। रिसाइकलिंग तभी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है जब यह प्रॉफिटेबल हो। रेडवुड मटेरियल्स का दावा है कि वे हर साल 100 मिलियन से अधिक के प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। EU जैसी लेजिस्लेशन के साथ प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। रेडवुड मटेरियल्स कैसे कर रहा है? वे प्रोप्राइटरी हाइड्रोमेटलर्जिकल टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं जो वेस्ट बैटरीज से स्पेसिफिक मेटल्स को लीच करते हैं। उन्होंने इसका अधिकांश हिस्सा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी पर आधारित किया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन और स्टोरेज की डिमांड को पूरा करने के लिए अधिक रॉ मटेरियल्स और माइनिंग की आवश्यकता होगी। फॉसिल फ्यूल्स पर रिड्यूस्ड डिपेंडेंस और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में मीनिंगफुल स्ट्राइड्स हैं। हमें नेक्स्ट जनरेशन के फोटोवोल्टेक्स, विंड टर्बाइंस पर नजर रखनी होगी जो रिसाइकलिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। यही कारण है कि मैं चैनल पर टॉपिक्स कवर करता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स की पहली जनरेशन डिकमिशन्ड हो रही है। हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल्स अपने ऑकवर्ड एडोलेसेंस से गुजर रहे हैं। हमारा काम है कि हम उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजीज में गाइड करें। क्रेडल टू ग्रेव पर्सपेक्टिव इसका एक क्रूशियल हिस्सा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या ये एडवांसेस हमें क्लोज्ड लूप आइडियल के करीब ले जा रही हैं? कमेंट्स में बताएं और मेरे फॉलोअप पॉडकास्ट स्टिल टू बी डिटरमिंड को सुनना सुनिश्चित करें, जहां हम इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। पेट्रंस को धन्यवाद कि आप इस चैनल को चलाने में मदद कर रहे हैं। अपना माइंड ओपन रखें, क्यूरियस रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।